ओम शांति, ओम शांति। आज हम सब हमारी तपस्या की बहुत अच्छी उड़ान में एक नई गति को प्राप्त करेंगे नई विधि से, और वो है हम सबके लिए अनुभवी वरिष्ठ भाइयों की पैनल और उनको पूछे गए प्रश्नों के जवाब में हम उनसे अनुभव को भी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आज के हमारे इस कार्यक्रम के पैनलिस्ट ब्रता राजयोगी आतम भाई जी, जो तीनों भाइयों के मध्य में विराजमान हैं, हम करतल ध्वनि से जोरदार तालियों से आपका स्वागत करते हैं। आपने 1957 में 57 में बाबा का ज्ञान लिया, माना बाबा मम्मा और आदि रत्नों की अनन्य पालना का संगम युगी भाग्य आप आत्मा को प्राप्त हुआ है। बेसिकली बीएससी इंजीनियरिंग के साथ करके आप 61 में आपने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। 1981 से आप प्यूरिटी और वर्ल्ड रिन्यूअल और ज्ञानामृत इनके संपादक के रूप में आपने अपनी सेवाएं देना शुरू किया है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की मीडिया विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और 1992 से आप शांतिवन परिसर में ही स्थित रहकर निवासी होकर यहाँ के प्रेस को बहुत अच्छी तरह से आप संचालन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, और हमारे मैगजीन को आप बहुत अच्छी तरह से संपादक के रूप में सबके बीच बाबा की बातों को ला रहे हैं। दिल्ली में जब चित्रशाला बनी उसके निमित्त भी आप बने, आपके लौकिक परिवार को ज्ञान में लाने के निमित्त भी आप बने। ऐसी अनन्य आत्मा, अनन्य रत्न, महारथी रत्न आज हमारे बीच उपस्थित है। आतम भाई, आपका पुनः पुनः इस सभा में स्वागत है, अभिवादन है, आवकार है। मेरे राइट साइड में जो विराजमान है भ्राता मोहन भाई सिंगल जी, आपको 1962 में ज्ञान मिला, 67 में आपने एमटेक का अभ्यास पूर्ण किया, और 67 से ही आपने ओएनजीसी में अपनी लौकिक सेवाएं देना शुरू किया, और उस सेवा के निमित्त आप आसाम, गुजरात, उत्तराखंड में भी बाबा के कई नए सेवा स्थान खोलने के भी निमित्त बने, और 96 में आप सुपरिटेंडेंट के रूप में आपने वॉलेंटियरी रिटायरमेंट लेकर के टोटल बाबा की सेवा में अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति को समर्पित किया है। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की इंजीनियरिंग विंग के आप चेयरपर्सन हैं, ब्रह्मा कुमारी की मैनेजमेंट कमिटी के भी आप सदस्य हैं, और राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की गवर्नर बॉडी में भी आप हैं। ज्ञान सरोवर एकेडमी के कोऑर्डिनेटर के रूप में आप अपनी सेवाएं देते हैं। मैंने आपको बहुत बाल्यकाल से देखा हुआ है, सेवा में नवीनता, जितने भी उस समय आध्यात्मिक मेले होते थे मेले में मार्गदर्शन नवीनता, जितने भी म्यूजियम बनते थे उस म्यूजियम की रूपरेखा और थीम को तैयार करना, वो आपकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। 1985 से जब पहली पदयात्राएं भारतवर्ष में शुरू हुई, तब पदयात्राओं का कोऑर्डिनेशन आपने बहुत अच्छी तरह से किया, और तब से आज तक जितनी भी साइंटिस्ट विंग की यात्राएं निकली उसको आपने सुचारू रूप से संभाला, पर्यावरण जागृति के भी कार्यक्रम किए और इसीलिए सरकार की तरफ से आपको पर्यावरण श्री का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। तो ऐसे परम स्नेही, परम आदरणीय मोहन भाई सिंगल जी का हम एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। बिल्कुल लास्ट में उस तरफ बैठे हुए डॉक्टर प्रेम मसन भाई, आप बेसिकली रेडिएशन ऑनको में आपने एमडी किया हुआ है। आपको 79 में इंदौर से बाबा का ज्ञान प्राप्त हुआ, आपने साउथ अमेरिका अकोला इंदौर में एज ए डॉक्टर अपनी लौकिक सेवाएं दी है। 1997 से आपने ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अपनी सेवाएं दी 2006 तक, 2007 से ट्रॉमा सेंटर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 2009 से आप ऑनररी कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप एक विशेष व्यक्तित्व के धनी हैं, बिल्कुल सरल चित, नम्र और डाउन टू अर्थ। जिसको एक डॉक्टर का व्यक्तित्व कैसा होता है वो देखना है तो हम डॉक्टर प्रेम भाई को देख सकते हैं। बाप दादा की सीजन में आप उन्हें देखते हैं, अनुभव करते हैं और आपने अपनी बुद्धि और शक्ति से बाबा के यज्ञ को अनेकविध कॉरपोरेटर में, कॉरपोरेट में, ब्राह्मण परिवार में तपस्या के रूप में अपनी विशेषता का लाभ लिया है। कॉरपोरेट जगत में अलग अलग प्रकार के पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर अलग अलग सब्जेक्ट में कोर्स करा करके भी आपने बाबा के ज्ञान को फैलाया है और दिया है। तो ऐसे त्रिमूर्ति रत्नों का हम पुनः पुनः दिल से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न हम पूछेंगे डॉक्टर प्रेम मसन से कि हर यज्ञ वत्स का यज्ञ के प्रति प्यार कैसे बढ़े, हर यज्ञ वत्स का क्या करे वो यज्ञ वत्स ब्राह्मण आत्माएं जो यज्ञ के प्रति प्यार बढ़ता जाए।
ओम शांति। प्यार एक पॉजिटिव इमोशन है और हम सभी के पास एज ए गिफ्ट मिलता है। हमारे अनादि गुणों में भी लव, कंपैशन ये गुण है। सबसे पहले इसमें मेरे को खुद को अच्छी तरह समझना है। जब मैं आत्मा खुद को समझती हूँ, खुद से कनेक्ट होती हूँ, कम्युनिकेट करती हूँ, बात करती हूँ और मैं अपनी लेवल को मैच्योरिटी लेवल तक लाता हूँ और जब मेरे में प्यार होगा तो दूसरों को भी प्यार दूंगा। परमात्मा भी प्यार का सागर है, उससे कनेक्ट होकर उस याद में जो प्यार मेरे को फ्लो के रूप में आ रहा है परमात्मा से, उस फ्लो को वाइब्रेशन के रूप में दूसरों को मेरे को देते रहना है। और अगर वो कनेक्शन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो मेरा नेचुरल फ्लो चलता रहेगा। तो पहला है खुद को प्यार करना, खुद को समझना, फिर परमात्मा से कनेक्ट होकर उस गुण को सर्व को देते रहना। और ये मेरा एक अनादि गुण है, उसको नेचुरल में बना दूं। इसकी कमी से ही बीमारियां आती है, म्यूटेशन ऑफ जीन्स होते हैं। जितने भी जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं उसका कारण है कि मैं अपने को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहा हूं। इसीलिए एक डॉक्टर ने कहा इल का अर्थ क्या, इल का अर्थ होता है बीमारी, पर इल का अर्थ उस डॉक्टर ने कहा आई लैक लव। तो जब वो लव हमारे में फ्लो नहीं होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और कई तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम आते हैं और बीमारियां आती है।
तो प्रेम भाई आपको ही आगे पूछ रही हूँ, तो ये प्यार फ्लो कैसे बढ़ाए, हम प्यार का फ्लो बढ़ाए कैसे?
जो हमारे साथ अनादि आदि गुण हैं, वो हमारे में है, हर आत्मा में वो प्रेजेंट है, वो एक तरह से मैं कहूँ हमारे जीन्स है, और वो सात गुण जैसे ही हमारे एक्टिव हो जाते हैं और जैसे ही हमारे में अवेयरनेस आती है, ज्ञान आ जाता है कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, तो वो ऑटोमेटिक फ्लो करेगा और जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल एनर्जी है और एनर्जी फ्लो ऑटोमेटिक होती है। जैसे मैं रेडिएशन फील्ड का हूँ, तो हर रेडियो एक्टिव ऑटोमेटिक रेडिएशन उसका जाता है, चाहे कोबाल्ट हो, यूरेनियम हो, इरिडियम हो, आयोडीन है, तो वो ऑटोमेटिक जा रहा है। इसी तरीके से हमारे में भी ये जो गुण हैं, केवल उनको हमें एक्टिव करना, अवेयर होना है, तो फ्लो ऑटोमेटिक होगा।
इसी के संदर्भ में आगे का प्रश्न हम ब्राता मोहन भाई सिंगल से पूछ रहे हैं कि वैसे तो कहा कि फ्लो ऑटोमेटिक होगा, लेकिन होता क्या है? हम आंखों से कुछ देखते हैं किसी साथी आत्मा के प्रति, लौकिक परिवार में भी, अलौकिक परिवार में भी, तब वो फ्लो कम हो जाता है। तो कौन सी ऐसी समझ है ज्ञान की, जैसे कहा ज्ञान ऑटोमेटिक आए, ज्ञान की ऐसी कौन सी समझ है जो हमारा स्नेह बढ़ता रहे और वो समझ हमारी वृत्तियों को बदलता रहे?
बहुत अच्छी बात प्रेम भाई ने बताई और बहन जी ने भी जो कहा, तो अगर आत्मा शब्द को ही लें, अंग्रेजी में सोल बोलते हैं, SOUL, और उसकी व्याख्या किसी ने की है कि सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव, यानी आत्मा प्रेम स्वरूप मुख्य है। वैसे तो आत्मा के सात गुण जैसे बता रहे थे, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, ये सब आत्मा के गुण, लेकिन उनमें भी प्रेम मुख्य है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम जो है, इससे हम कम्युनिकेट जो करते हैं वो ज़्यादातर पूरा पॉजिटिव कम्युनिकेशन होता है। और प्रेम का वैसे भी कहा जाता है राग और द्वेष दो चीज है, तो राग यानी कि प्रेम से तात्पर्य है, और द्वेष जो है वो निगेटिविटी से, अंतर्कलह, ईर्ष्या आदि आदि। तो इसीलिए अगर हम प्रेम को ये चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने को प्रेम स्वरूप आत्मा समझें। और इस रेफरेंस में मैं बताना चाहूँगा कि मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का, और काफ़ी अरसे तक रहने का भी सौभाग्य मिला। और अंतिम दिन 18 जनवरी को जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो 17 और 18 जनवरी को मधुबन में बाबा के साथ ही साथ रहने का मौका मिला, उनकी कर्मातीत अवस्था भी देखने का, फरिश्ता स्वरूप स्थिति देखने का। तो इस रेफरेंस में मैं बताना चाहूँगा कि ब्रह्मा बाबा से ना जब मिलते थे, तो बस बाबा देखते थे नैनों में और भ्रकुटी में, और वाइब्रेशंस बाबा के पहले पहुंच जाते थे, और बाबा कहते थे दोनों हाथ फैला के, आओ बच्चे, आओ बच्चे, और बस हम सब बाबा की गोद में चले जाते थे। और उसका भाव ये है कि जैसे ही बाबा का की दृष्टि हमारे नैनों में हमारे प्रकृति में पड़ती थी, और आप सब ने भी सुना है, लिखा है, बाबा ने कितना अभ्यास किया था, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, आदि आदि जो भी बाबा के लौकिक संबंधी आदि थे। तो हम अपने से पूछें कि क्या मैंने भी ऐसा अभ्यास किया है, मैं कर रहा हूँ, जिसको भी देखता हूँ वो आत्मा स्वरूप में जब देखते हैं, और जब बाबा को ये धीरे धीरे करके बहुत पक्का हो गया, तो बाबा जिसको भी देखते थे वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था, और आत्मिक स्वरूप माने प्रेम की वाइब्रेशंस उस तक पहुंचने लगती थी, क्योंकि जैसी व्यक्ति की वृत्ति होती है वैसा ही उसका वाइब्रेशन होता है, और फिर वैसा ही वायुमंडल बन जाता है। तो ब्रह्मा बाबा के पास जब हम जाते थे, और वही चीज हमने मम्मा को और बड़ी दादियों के साथ वो देखी, बस दादियों के संपर्क में जैसे आते थे, अभी भी बड़े वरिष्ठ भाई बहनों दादियों के, तो देखते ही प्रेम की वाइब्रेशंस वो ऐसे पहुंचती है कि हम अक्षर बोले न बोले हैं लेकिन प्रेम में जैसे डूब जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें सबसे पहला अनुभव यही, बाबा की तरह हमें अभ्यास भी करें हम, और हर आत्मा को भी देखें, और साथ ही साथ ये वाइब्रेशंस भी भेजें उसे, जिससे कि बोलना तो बाद में होता है, वाइब्रेशंस होते हैं, अब वो आत्मा जैसे प्रेम में डूब जाती है, रंग जाती है, और हम भी यही अनुभव करते हैं कि ये सारा संसार जैसे प्रेममय है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद। आत्म भाई को इसी संदर्भ में हम प्रश्न पूछते हैं कि साकार बाबा के जीवन के कोई ऐसे एग्जाम्पल आप हमें सुनाएं, या मम्मा के जीवन के, जिसमें यज्ञ स्नेह साफ साफ अनुभव में आता हो या दिखाई देता हो। आत्म भाई जी,
मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ, पद्मा पद्म भाग्यशाली समझता हूँ कि आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती, इनके साथ रहने का या इनके साथ रूबरू कार्य करने का 12 साल तक मुझे मौका मिला, और बाबा मम्मा दोनों ही जैसे शिव बाबा के गुण हैं, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का, जितने भी 7-8-9 गुण हैं शिव बाबा के, वो इन दोनों में ही वो वास्तव में विराजमान थे। विशेषकर हम ब्रह्मा बाबा से मिलते थे, हम पहली बार जब उनसे मिले दिल्ली में, तो बाबा से मिले, हमें ये नहीं मालूम था कि बाबा से कैसे मिलना होता है, नए नए अभी 8-10 दिन के थे, हमें ये नहीं पता था कि कैसे बाबा से मिलना है। तो ऑटोमेटिक जब बाबा को देखा, मम्मा को देखा, ऐसा देखा कि दो फरिश्ते हमारे सामने बैठे हैं, ये वही आदि देव आदि देवी, ये वही ब्रह्मा सरस्वती हैं, हमारे अपने ही लौकिक जैसे माता पिता हैं, ऐसी वासना आई कि ये हमारे ही माता पिता हैं। ऑटोमेटिक उनकी गोद में गए, उन्हें प्यार किया, उन्हें स्नेह दिया, आंसू पूछे, कि बच्चे आप तो मिल लिए ना, तो उतना उनका इतना प्यार में इतनी खींच थी कि जो मिलने होता था जो स्वयं ही उनकी गोद में चला जाता था। तो हमने उनकी गोद ली, उनसे प्यार पाया, और ये भी देखा जब भी उनसे कोई हम छोड़ जब हम उसके बाद जैसे हम इस पूरा इस कार्य में अपने आप को लगा दिया, तो एक बार हम छोटा सा कार्य करके आए थे ऊपर हिस्ट्री हॉल में, हम चित्र बनवा के आए थे, आप बताया ना हम चित्रशाला बनाई थी, तो बाबा वहां देखने के लिए आए और देखा और अपने कमरे में बुलाया बाबा। मैं नीचे बैठने लगा तो बाबा ने कहा नहीं नहीं मेरे साथ गद्दी पर बैठो, उनकी गद्दी अपनी गद्दी पर मुझे बिठाया। और बाबा के महावाक्य थे, देखो वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। तो ये जो उमंग उत्साह भरने वाला महावाक्य था तो बिल्कुल ही जैसे हमें खींच लिया, तब से लेकर के अब तक बाबा की जो बाबा ने महावाक्य उठाया उनके बाप की गद्दी, तो यही जो भी बाबा का कार्य है तब से कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और बाबा कहा और खुशी आई, ये अनुभव हमको होता ही रहता है। ओम शांति।
बहुत अच्छी बात है, मुख से बाबा शब्द बोला और खुशी आ गई, बाबा के समीप गई और वो वाइब्रेशन ने जैसे स्नेह के सागर में हमें डुबो दिया। आगे का प्रश्न मोहन भाई जी से है, यज्ञ में हर प्रकार के सहयोगी कैसे बन सकते हैं? हर प्रकार का सहयोग देना है तो कौन सी वृत्ति चाहिए, कौन सी भावनाएं चाहिए?
हम सभी लोग अपने अपने स्थानों पर रहते हैं और अपनी अपनी प्रवृत्ति करते हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ाई करता है, आदि आदि। तो हमारा अधिकतर संबंध तो जो सेंटर होता है, जहाँ क्लास होती है हमारी, जहाँ करते हैं क्लास, वहाँ निमित्त बहनों के साथ और वहाँ के देवी परिवार के साथ होता है। तो इसलिए जितना उनके साथ हमारा संबंध प्रेम का, उनका अंडरस्टैंडिंग का, सहयोग का, ऐसा संबंध होगा जिसमें सब प्रकार की पॉजिटिविटी होगी, तो नेचुरली हम सब सतयुग में तो एक दूसरे के निकट होंगे ही, वहाँ तो सब देवी देवता होंगे, लेकिन वो संस्कार हमें यहाँ ही भरने हैं जैसे बाबा कहता है। इस कारण से यहाँ हमें सब प्रकार का सहयोग जो बाबा कहता है, तन मन धन समय शक्तियाँ और जितना प्रकार के हमारे जो दिव्य गुण हैं, वो गुणों का आदान प्रदान भी वह इस रीति से हम सब करते चलें। बाबा ने अनेक खजाने जो दिए हैं, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संकल्प समय और संकल्प, ये सबसे बड़े खजाने बाबा ने बताए हैं। तो एक तो हम धीरे धीरे समय की अवधि बढ़ाते जाएं ईश्वरीय सेवा के संपर्क के साथ साथ, सेवा केंद्र के साथ साथ, बहनों के साथ साथ, और जितनी अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी डेवलपमेंट होगी उतना उतना हम सेवा के क्षेत्र में और आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ मनसा एक बहुत बड़ी चीज है जो बाबा ने बताया, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो इसीलिए हमारे मन के अंदर जो होगा वो हमारे चेहरे से प्रदर्शित होगा, खुशी की भावनाएं होंगी तो खुशी की लहरें वाइब्रेशन भी आएंगी, चेहरे से भी खुशी प्रदर्शित होगी। एक एक अंग से, नैन है हमारे, मुख है हमारा मुकम्मल, और पूरा शरीर का एक एक अंग जैसे खुशी में नाचता प्रतीत होगा। तो इसीलिए जहाँ खुशी होती है, खुशी के साथ साथ कोई भी कार्य किया जाता है वो सफल होता है, और वो सफलता के साथ साथ हमारा ऊपर कॉन्फिडेंस निमित्त बहनों का भी बढ़ता जाता है। हमें आज कोई छोटा सेवा का कार्य मिला, कल को उससे बड़ा और सेवा का कार्य मिलता है, और उससे बड़ा होता है, बुद्धि की लाइन क्लियर होती जाती है, और बाप दादा जैसे स्वतः ही हमें निमित्त बनाता जाता है आगे बढ़ने के लिए। हमारा तो अपना ये व्यक्तिगत अनुभव है, और हम समझते हैं इस रीति से सभी के साथ हमारा प्रेम स्नेह अंडरस्टैंडिंग ये सब रहेगा तो हम जीवन में आगे सदा बढ़ते रहेंगे।
मोहन भाई जी, पर यज्ञ में किस किस प्रकार से सहयोगी बन सकते हैं? हर प्रकार के सहयोग ठीक है, पर अभी किस किस प्रकार से हम अपने जीवन में सहयोगी बन सकते हैं?
सबसे पहले तो बताया ही है, मुख्य हमारे चार जो बातें हैं, तन मन धन और संबंध, इनसे सहयोगी। सबसे पहले तो हम अपने तन से सहयोगी की नियमित रीति से क्लास करें, और वो क्लास को केवल हम सुने ही नहीं, बल्कि जिस समय क्लास सुने उसके स्वरूप बन करके अगर क्लास सुनेंगे तो वो चीज हमारे अंदर धारणा में उतरती जाएगी। दूसरी बात कि इसके साथ साथ क्लास के साथ साथ, क्योंकि चार विषय हमारे बताए गए हैं, ज्ञान योग सेवा और धारणा, तो इन चारों को हम लोग पहले क्या करते थे, मुझे याद आता है कि क्लास की मुरली सुनते थे तो चार पार्ट में पॉइंट लिखा करते थे, ज्ञान के पॉइंट अलग, योग के, सेवा के, धारणा के, और उस रीति से उनको अगर हम एक एक चीज में हम अपने को अगर चेक करते चले तो मैं समझता हूँ कि चारों विषय में यहाँ समानता होगी, लेकिन साथ ही साथ हम कोई ना कोई एक विषय में मास्टरी भी कर ले। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा था, मुझे याद है, कि अगर एक सब्जेक्ट में मास्टरी हो जाती है तो वो बाकी तीन सब्जेक्ट में अगर कुछ कमी रह गई तो उसको भी अपने साथ आगे खींच लेता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस रीति से चारों विषयों के ऊपर हमारा अगर ध्यान रहेगा तो हम नियमित रीति से आगे बढ़ते जाएंगे और खुशी का पारा भी हमारा चढ़ता जाएगा। धन्यवाद।
डॉक्टर प्रेम भाई जी, इसी विषय को आप आगे क्या स्पष्ट कर सकते हैं, यज्ञ में किस किस प्रकार से हम सहयोगी बन सकते हैं?
जैसा बताया भाई साहब ने कि हम, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, चाहे तन है, हमारे पास जो दिया गया है, मन है, धन है, टाइम है, संपर्क संबंध है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस दिए गए हैं उनका फुली यूज करना। अगर हम देखें, लाइफ इज अ गेम ऑफ 4 R, हमारी जिंदगी 4 R पर डिपेंड है। पहला R है रोल, मेरा रोल क्या है। दूसरा R है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा R है रिलेशनशिप, और चौथा R है रिसोर्सेस। चारों R को हमें फुली यूज करना है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा रोल क्या है, हमें क्यों सिलेक्ट किया गया है, मुझे बाबा ने क्यों पकड़ा है, मेरे अंदर कौन सी विशेषता है, स्पेशलिटी है, जिसके कारण मैं यज्ञ में आया हूँ, उसको बाहर निकालना है। और उसका फुल 100% यूज करना है। जब हम उसको, उस स्किल को, उस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक हमारे अंदर आती जाती है, क्योंकि हर आत्मा को संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो उसके लिए हम जितना देते हैं लोगों को, जितना मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, खुशी दूंगा तो बढ़ेगी। तो जो मेरे अंदर है, अगर मैं वो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो मैं हर तरीके से मदद करूंगा। मुझे याद है बड़ी दादी जी ने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट किया था और बहुत अच्छा मुझे लगा था वो, क्योंकि लोग पूछते थे कि यज्ञ कैसे चलता है। दादी जी ने उस समय हर दिन कम से कम, चाहे हेडक्वार्टर है चाहे सेंटर है, 1 रुपया उस बॉक्स में डालना है। मैंने देखा कि उसको सब लोगों ने बहुत पॉजिटिव लिया और सब लोग कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते थे, चाहे 1 रुपए से कम भी कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं। और उसके कारण जो प्रोजेक्ट था इतना अच्छा चला कि जो फ्लो है मनी का वो ऑटोमेटिक चलता रहा। तो छोटी चीजों को अच्छी तरह करना ही सहयोग देना है, कोई बड़ी चीज नहीं करना है। पर मेरे पास क्या है उसको देना है। ग्लोबल हॉस्पिटल का भी मुझे याद है, जब ग्लोबल हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, कई बहनें भाइयों का फोन आता था दादी के पास, हम एक ईंट भेज रहे हैं, एक ईंट आप लगवा देना। तो एक ईंट कोई बहुत बड़ा मायना रखती नहीं है, पर जिस प्यार से वो भेज रहा था वो कनेक्टिविटी करता है और उसका फ्लो चालू हो जाता है। तो जो हमारे अंदर दिए गए हैं संगम पर रिसोर्सेस, उसको 100% यूज करें। हाथ उठाए, हाँ हाथ उठाए और कहें, मैं अपने को प्यार करता हूँ। आवाज ऊपर करें, मैं अपने को प्यार करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं 100% कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। तो इनको सुनने के बाद ऐसा लगता है जहाँ यज्ञ के प्रति स्नेह है वहाँ सहयोग है, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, चाहे जीवन का हो, स्नेह है वहाँ सहयोग ऑटोमेटिक मिल ही जाता है। आदरणीय आत्म भाई ने तो अपने जीवन में भी कई ऐसी बातें हैं जो यज्ञ में स्वाहा की है, यज्ञ में सफल किया है इंडिविजुअल भी। तो आत्म भाई, हम आपसे आपके ही जीवन का उस स्नेह और सहयोग का कोई एक उदाहरण, कोई एक अनुभव सुनना चाहेंगे जिसने आप में बल भरा हो।
जब अभी मैं पहले पहले ज्ञान में आया तो और कोई हमारे लौकिक परिवार में से ज्ञान में नहीं था, तो हम बाबा से मिलने के लिए रजौरी गार्डन में गए। तो बाबा ने ये कहा, बच्चे अभी इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, तब की बात है 1957 की, उस समय भी ऐसा वातावरण दुनिया का था जैसे आजकल यूक्रेन की लड़ाई सामने खड़ी है, उसमें भी ऐसा था। जब से यज्ञ की स्थापना हुई है ना, विनाश ज्वाला निकली, तो विनाश ज्वाला निकली रही है, और तब भी लगता था कि विनाश हुआ कि हुआ, नहर स्वेज और मिस्र की लड़ाई जैसे हो रही थी। तो बाबा को हमने कहा, बाबा ने कहा ये इतनी 4-5 साल पढ़ोगे, ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, भगवानो वाच। ये बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। तो हमने जब वापस गए तो बाबा को एक लेटर लिखा, बाबा इंग्लिश में लेटर लिखा और बाप ने इंग्लिश में जवाब दिया। अब आई डोंट वांट टू, इंजीनियर क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग एंड रोड्स बिल्डिंग्स, बट आई वांट टू बी ए stone of the cornerstone of the huge edifice of new world which you are creating, which you are building. Philika, I don't want to construct roads, but I want to run on the highway going to Paramdham, then coming to Golden Age. Then I wrote, I don't want to be construct machinery. Engineers, first, second year, third, combined. But I want to be become a part and parcel of king and queen machining which you have invented. एक ऐसा बाबा को लेटर लिखा, बाबा को इंग्लिश में लिखा, और बाबा ने भी इंग्लिश में लिखा, चाइल्ड बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर लौकिक फैमिली एंड टू योर स्टूडेंट्स, जो हमारे क्लास फेलोज थे उसको ये ज्ञान दो. तो जो बाबा ने कहा, हमने भले बाबा ने कहा, बाबा आप कैसे आठ घंटे याद में रहो या और कोई बातें जो हम नहीं कर सकते, परंतु ये एक बात थी जो बाबा कहते थे हम उसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते थे. तो हमने क्या, तो बहुत स्टूडेंट्स ज्ञान में आ गए, लोकल फैमिली भी ज्ञान में आ गई. तो उस समय हमको हमने अपनी लोकल जमीन भी बेच दी, तो हमको वर्षा मिला कुछ. बाबा ने कहा, बच्चे इसको बैंक में रख दो, ये बाबा ने कहा. तो मैंने कहा, बाबा आपने तो अपना पैसा बैंक में रखा नहीं. तो वो जो भी मैं मिला था उस वक्त, उस 1957 या 62 या उसके बाद, तो हमने उस सेवा में लगा दिया. तो सेवा में लगाने से क्या हुआ, उससे बड़ी हिम्मत मिली, उसी से हमारा सारा लौकिक परिवार भी ज्ञान में आ गया. क्योंकि जहां धन होता है, जिसका भी धन लगता है, तो वो उसको भी वो खींच के ले आता है. तो यदि हम तन से, मन से, धन से, जन से, किसी प्रकार से भी हम सेवा में सहयोगी बनते हैं और जिसका भी सहयोग देते हैं, खुद को तो फायदा होता ही है, दूसरे को भी फायदा होता है जिसका हम लगा रहे हैं. तो हमें तो एक सहयोगी बनना है. और भगवान का घर है, देखो भगवान का हमें तो निश्चय है पूरा. कई कईयों को शायद कुछ हो, परंतु बाबा ने जो कहा है, ये कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, नई दुनिया आ रही है, आ ही रही है, उसके लिए हम अपना तन, मन, धन, जन और किसी प्रकार का भी सहयोग हो, इसके अंदर देना देते हैं और दे भी रहे हैं. आप सब लोग देना चाहिए और बहुत बहुत सहयोगी बनना चाहिए. ओम शांति.
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम भाई जी. यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी जो आत्माएं होती है, ऑटोमेटिक उसमें यज्ञ रक्षक की क्वालिटी होती है. तो आपके हिसाब से यज्ञ रक्षक किसे कहा जाता है?
इसकी काफी बड़ी डेफिनेशन है. प्रोटेक्शन, रक्षक यानी मैं यज्ञ को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, एक सिक्योरिटी प्रदान कर रहा हूं. यज्ञ एक कलेक्शन है, यज्ञ एक इंडिविजुअल नहीं है. यज्ञ जितनी भी आत्माएं यज्ञ से जुड़ी हुई है वो सब यज्ञ हैं. हर आत्मा जो इसमें पार्ट ले रही है वो भी यज्ञ है. तो अगर हम मनसा वाचा कर्मणा प्योर रहते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, और जो मैं काम कर रहा हूं उसको दूसरे देख रहे हैं, मेरे को सबसे अच्छा डेफिनेशन यही लगा कि जो मैं कर रहा हूं उसको देखकर दूसरे भी कर रहे हैं. लोग मुझे देख रहे हैं, दुनिया मेरे को देख रही है, मैं हीरो एक्टर हूं. और उस हीरो एक्टर में अगर मैं अपना पार्ट अंदर बाहर प्यार से प्ले कर रहा हूं तो मैं यज्ञ रक्षक हूं. क्योंकि अगर मैं श्रीमत का उल्लंघन कर रहा हूं, कहीं ना कहीं जो मुझे मूल्यों में बाबा ने बताया उसका मैं ऑपोजिट कर रहा हूं तो मैं यज्ञ रक्षक नहीं हूं. तो मैं जो फॉलो कर रहा हूं बाप दादा को, यज्ञ के प्रोटोकॉल को, नियम को, तो मैं एक तरह से यज्ञ रक्षक बनते जाता हूं. और उसमें जो फ्लो चल रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट है प्यार का, क्योंकि आज मैं देख रहा हूं एज ए डॉक्टर बीमारी का मुख्य कारण भी बिंग अनलव्ड हो गया। मदर टेरेसा ने भी कहा कि सबसे बड़ी गरीबी कौन सी है, तो मदर टेरेसा ने कहा बिंग अनलव्ड, मेरे को कोई प्यार नहीं करता। तो मैं अगर प्यार भी दे रहा हूं, खुशी भी दे रहा हूं लोगों को जो मेरे साथ कार्य कर रहे हैं, और दूसरे भी जो भी आत्माएं मेरे कांटेक्ट में आ रही हैं, उनको भी खुशी दे रहा हूं, तो मैं यज्ञ रक्षक हूं। क्योंकि जो आत्मा मेरे पास आ रही है एज ए डॉक्टर मेरे पास आ रही है, और उनको मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ कर ट्रीटमेंट दे रहा हूं, सहयोग दे रहा हूं, तो मैं यज्ञ रक्षक हूं। मेरा काम केवल दवाई लिखना नहीं है, पर दवाई के साथ साथ उसको क्या चाहिए वो भी मेरे को कंट्रीब्यूट करना है, तो यज्ञ रक्षक है। यज्ञ रक्षक एक केवल वो नहीं है कि हम केवल यज्ञ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यज्ञ रक्षक का अर्थ है जो गुण है हमारे अंदर, जो शक्तियां हैं उनको हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमें देख रही है कि ये कौन है। तो यज्ञ पहले है, व्यक्ति बाद में है। यज्ञ अगर पहले हम रखकर चलते हैं कि वो करा रहा है और मैं कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे को बैठे बैठे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आई प्यार पर, जो मैं कंट्रीब्यूट करता हूं, जो मैसेज को जो बहन जी ने शुरू किया एकदम मेरे को कनेक्ट हुई। एक बहन अपने मकान में जा रही है, मकान का दरवाजा खोलने के बाहर देखती है कि बाहर तीन मॉन्क बैठे हुए हैं, साधु बैठे हुए हैं। उन्होंने उनको कहा आप अंदर आइए मैं खाना खिलाती हूँ। बोला नहीं, जब आपके पति आ जाएंगे तब हम अंदर आएंगे। शाम को जब उनका पति आ गए तो पति ने कहा उनको बुलाओ। तो पत्नी गई, बोला आप अंदर आइए। तो एक साधु ने कहा मैं सफलता हूं, दूसरा मेरे साथ जो है वो धन है, और तीसरा जो है वो प्यार है। आप एक को बोलेंगे हम एक जना एक समय पर आएगा, आप पहले अंदर जाकर कंसल्ट कर लो पति से, आपकी डॉटर से कौन पहले आए। वो अंदर गई, बताया तो पति ने कहा धन को बुला लो पैसा आ जाएगा। वाइफ ने कहा नहीं सफलता को बुला लो, पर लड़की बहुत शार्प इंटेलेक्ट थी, बोला प्यार को बुला लो। तो वो बाहर गई, सबने एग्री कर लिया कि पहले प्यार को बुला लो। जैसे ही बाहर गई और बोला पहले प्यार आ जाए, जैसे ही प्यार अंदर जाना शुरू किया धन और सफलता भी पीछे चल पड़ी। बोला ऐसे कैसे, आपने तो कहा था एक टाइम पर एक। तो बोला जहां प्यार है वहां धन और सफलता ऑटोमेटिक आ जाती है।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम भाई। यज्ञ रक्षक की बात चल रही थी तो हर ब्राह्मण यज्ञ रक्षक कैसे बन सकता है, क्योंकि यज्ञ की रक्षा, एक प्रेम भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि श्रीमत पर चलना सबसे बड़ी यज्ञ रक्षा है। तो हर ब्राह्मण, हम हर ईश्वरीय परिवार के सदस्य, हम हर ब्राह्मण कुलभूषण यज्ञ रक्षक कैसे बन सकते हैं, हम सुनना चाहेंगे आदरणीय मोहन भाई जी से।
हम सबके सामने तो एक ही रोल मॉडल है, वो है साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो हम समझते हैं कि हमारी सारी सफलता, सारा हमारा यज्ञ रक्षक, सब कुछ डिपेंड करता है एक शब्द पर, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करते चले। अब कई ये कह सकते हैं हमने तो ब्रह्मा बाबा को देखा नहीं है, लेकिन मुझे चूंकि ये देखने का सौभाग्य मिला है तो मैं कुछ बातों का इंडिकेशन देना चाहता हूँ। तो फॉलो फादर में बाबा का एक, हमने ये देखा कि कभी भी बाबा ने अपने को ऐसा हेड नहीं समझा, कहीं भी जाते थे कुछ अगर कचरा पड़ा है उठा के अपने आप रख दिया, कोई भी काम होता था कभी उन्होंने ये नहीं समझा कि मैं हेड हूँ। तो ऑल वर्क, सारे काम सभी के हैं। एक तो हम यज्ञ रक्षक में ये भावना अगर हम डेवलप करेंगे, केवल वो ही काम नहीं कि जिसके लिए मैं निमित्त हूँ, बल्कि सारे काम मेरे काम हैं, वो भावना रखेंगे तो एक तो हम सदा ही आगे बढ़ते जाएंगे और खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बनते जाएंगे और दूसरे भी हमें देख करके आगे बढ़ते जाएंगे। इस रेफरेंस में मुझे दादी जी की, दादी प्रकाशमणि जी की एक बात याद आती है। एक सीनियर बहन दादी के पास बोल रही थी बैठी हुई कि दादी, लव एंड लॉ दो बात कहते हैं आप, लेकिन कई बार हम देखते हैं बड़ा डिफिकल्ट आ जाता है, डिफिकल्टी आ जाती है अगर लॉ की बात करते हैं, खाली लॉ, तो वो भी कई बार मुश्किल में डाल देता है, और खाली स्नेह से चलाएं तो वो भी नहीं, तो बैलेंस रखना बहुत बहुत मुश्किल है। तो दादी ने कहा कि पहले ये सिद्धांत था कि लव एंड लॉ का बैलेंस रख के चलो, लेकिन अब सिद्धांत है, दादी कहती है, लव इज लॉ। तो लव जहाँ है, स्नेह है, वो ही वास्तव में हमारा सिद्धांत है, यानी हरेक को स्नेह के साथ चलाएं, लव इज लॉ। तो अगर एक शब्द के अंदर हम देखें तो उस शब्द के अंदर वो शब्द है बैलेंस। बैलेंस होकर हम चलते रहें, इसीलिए कहा है गीता में भी, अल्टीमेटली बोला है कि मान अपमान, निंदा स्तुति, हानि लाभ, दुख सुख, हर चीज में समान अगर हम चाहते हैं अपनी स्थिति, तो उसके लिए, बैलेंस के लिए हम लोगों को शरीर के जो दोनों पार्ट का है, मेडिकल डॉक्टर भी बताते हैं कि जो है लेफ्ट एंड राइट पार्ट ब्रेन का, तो दोनों में जहाँ तक हम बैलेंस बनाकर चलते रहेंगे तो हमारा जीवन यथार्थ रीति से चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, लव एंड लॉ का जैसे एक बात बताई, लेकिन एक है साथ साथ, हाँ, क्या क्या होना चाहिए जीवन के अंदर। जैसे शरीर में दो टांगे हैं, बैलेंस दोनों टांगों में अगर होता है तो व्यक्ति तेजी से चलता है। ऐसे ही जीवन के अंदर यदि हम लेफ्ट एंड राइट पार्ट ब्रेन का बैलेंस रखते हैं, यानी कि एक इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड पार्ट और एक भावनात्मक पक्ष जो है, लेफ्ट जो है वो फिजिकली चीजों को डील ज्यादा करता है, तो आजकल हम सब लेफ्ट ओरिएंटेड ज्यादा हो गए हैं, भौतिक चीजों में ज्यादा वो करते हैं, लेकिन राइट पार्ट जो ब्रेन का है, जो भावनात्मक पक्ष है, वो प्रैक्टिकली निग्लेक्ट जैसा हो गया है। तो जीवन में अगर हम इन दोनों पार्ट का बैलेंस रख करके अगर चलते रहते हैं तो जीवन में एक बैलेंस रहता है। अक्सर करके जब ज्ञान में आते हैं ना, तो आप सबको अनुभव है, शुरू में बहुत जोश होता है, अच्छा होता है, हम लोग ज्ञान में ज्यादा समय देते हैं तो लौकिक पार्ट कम हो जाता है, और लौकिक में जब बैलेंस समय ज्यादा देते हैं तो अलौकिक पार्ट का कम हो जाता है। जीवन में अगर हम सफलता चाहते हैं प्रॉपर, तो दोनों का बैलेंस रखते हुए अगर हम चलते रहेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके साथ साथ हमें बाबा का जो भी बात होती है वो बात को लेकर के हम बाबा या निमित्त आत्माओं से अगर हम पूछते रहते हैं, तो मैंने देखा है उस समय हमें कई बार वो चीज लगती है कि अरे ये तो ठीक नहीं प्रतीत होता, लेकिन देखा गया है कि लॉन्ग रन में उसी के अंदर ही वो सफलता समाई हुई होती है। हमारे पास तो जीवन में ऐसे बहुत बहुत उदाहरण हैं साकार बाबा मामा के, कि जिसके की अंदर अगर बाबा की बात सिंपली मान ली और उसके अंदर फिर देखें तो थोड़े समय के बाद ही कितनी सफलता समाई हुई लगती है, ऐसा हम समझते हैं।
वर्तमान समय के हिसाब से मोहन भाई, हम ब्राह्मण यज्ञ की रक्षा कैसे करें? जो समय चल रहा है उसके हिसाब से हम ब्राह्मण यज्ञ की रक्षा कैसे करें?
वर्तमान समय के हिसाब से बाबा ने बहुत बहुत स्पष्ट बता दिया है, और बाबा ने ये कहा है कि ये देखना है बच्चों को कि बाप आपका टीचर बने, समय आपका टीचर ना बने। अभी देखिए कोविड आया, तो कोविड की वजह से बहुत परिस्थितियां हुई, लेकिन ये समय टीचर बन गया हमारा। बाबा तो कह रहा है योग को बढ़ाओ, 8 घंटा करें, और उसके साथ साथ बाबा ने बहुत सारी जीवन के लिए बात बताई, लेकिन समय ने हमें, समय हमारा शिक्षक बना, उसकी वजह से लॉकडाउन वगैरह भी हुए या जो जो परिस्थितियां आई वो हमने समय की वजह से पालन करी, इस कारण से नेचुरली उसका भी फायदा हुआ। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि जो जो बाबा ने कहा है उस परिस्थिति को देखते हुए हमें चलना है, और वो परिस्थितियों में मुख्य 2-3 बातें आती हैं। एक तो ये याद की यात्रा, जिसमें बाबा ने ये बताया है, बुद्धि की लाइन जितनी क्लीन और क्लियर होगी, नंबर 1। क्यों? क्योंकि अभी मुझे याद है शुरू में ही बाबा ने बताया था कि देखो साकार के द्वारा पहले पार्ट चला, फिर उसके बाद अब गुलजार दादी जी के द्वारा पार्ट चला, और अभी हर बच्चे के द्वारा पार्ट चलना है। हर बच्चे की परिस्थिति अपनी होगी, बाबा उसे टच करेगा। बाबा के पास हर बच्चे का टीवी है, और जब भी किसी बच्चे के द्वारा कोई ऐसी बात होती है जो मर्यादा के विपरीत होती है, मर्यादा विहीन होती है, तो बच्चे का वो टीवी ऑन हो जाता है, बाबा देखता है, और फिर बाबा उस बच्चे को शक्ति देता है, उस बच्चे को राह दिखाता है। अगर बच्चे की बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हुई तो बच्चा कैच करके उस गलत रास्ते से हट जाता है, और अगर नहीं हुआ और अगर बच्चे ने नेग्लेक्ट कर दिया, उस बात को छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा कि बच्चा गलत रास्ते की तरफ चला जाता है। तो अभी आवश्यकता ये है कि एक तो हमें बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखनी है, दूसरी बात हमें स्वस्थिति इतनी स्ट्रांग बनानी है कि हर परिस्थिति के ऊपर वो विजय प्राप्त कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा को कई बार मुरली सुनाते हुए बड़ी खांसी आ जाती, कफ आता था बहुत, हमें लगता था बाबा को आंखों गीली हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है, देखते थे बस बाबा थोड़े समय में कहते देखो बच्चे, बाबा के चित्र संदली के पास ही श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट का पिक्चर और लक्ष्मी नारायण का पिक्चर था। बाबा कहता देखो बच्चे, अभी तो ये तमो प्रधान शरीर है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, उसका शरीर बना है, आत्मा भी तमो गुणी हो गई है 84 जन्म लेते हुए, और कल बाबा जाके ऐसा मिशन कृष्ण बनेगा, कल बाबा जाके ऐसा सतो प्रधान शरीर मिलेगा बाबा को, और ऐसा विष्णु कृष्ण बच्चों को खुशी में खग्गियां मारनी चाहिए। और बाबा खग्गी मार करके भी ऐसे बताता था कि ओ बच्चे इतनी खुशी होनी चाहिए। तो भाव क्या है कहने का कि वर्तमान समय, एक मुरली बाबा ने बोला चाहे प्राण चले जाए लेकिन खुशी ना जाए, इसका भाव क्या है? इसका भाव यही है कि बस किसी भी कीमत पर हमें अपनी खुशी को कायम रखना है, और इसके लिए आवश्यक ये है कि हम प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने तन और मन उन दोनों की दिनचर्या को बना के फिर उसको फॉलो करते हुए चलते रहेंगे तो जीवन में सफलता मिलती चली जाएगी।
अभी लास्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। परम आदरणीय आतम भाई से ब्रह्मा बाबा के जीवन की ऐसी मुख्य बातें जो आपने देखी हो जिससे आपका जीवन इतना महान बना, आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल रूप बने, तो वो बातें हमको सुनाएं। आप कैसे बने?
हम जब पहली बार मधुबन में आए थे, पहले बाबा मम्मा से दिल्ली में रजौरी गार्डन में तो मिले ही थे, परंतु जब हम पहली बार मधुबन में आए, उन दिनों में कोई मधुबन में जैसा भी आप आते हैं यहाँ भीड़ लगी होती है, उस वक्त वो मधुबन एक मधुबनी था, नहीं पांडव वन था, और बाबा का कमरा था, और कोई हिस्ट्री आज भी नहीं था जब हम आए थे। उस वक्त वहाँ यीशु दादी का जो कमरा है वो ऑफिस था, वहाँ ही क्लास लगा करती थी, अभी हिस्ट्री हाल भी नहीं बना था। तो मैं सुना जब हम आए मधुबन में, उस समय बाबा शाम को खेलते थे। क्या खेलते थे आप बताइए, क्या खेलते होंगे? बैडमिंटन? नहीं, बैडमिंटन तो बाद में खेलते थे, पहले पहले बाबा क्रिकेट खेलते थे। अभी जो वहाँ शांति स्तंभ है ना वहाँ पर, वो तो शांति स्तंभ तो बाद में बना बाबा के बाद, बहुत खुला मैदान था, और बाबा शाम को जैसे हल्का सा बैट ला करके, एक दादा विश्व रतन थे, आपने नाम सुना होगा शायद, वो गेंद फेंकते थे और बाबा लगाते थे जोर से। तो मुझे इतना अच्छा सीन लगा, मैं कह देखो 80 साल 82 साल की एज थी बाबा की, और देखो ब्रह्मा बाबा क्या खेल रहे हैं। देखो मैंने, मेरे पास कैमरा था तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की, बाबा खेल छोड़ दिया और मेरे पास आए। बाबा ने कहा बच्चे फोटो मत लो। मैंने कहा ठीक है, बाबा बोल रहे हैं तो नहीं लेना की फोटो। फिर थोड़ी देर में कहा अच्छा बच्चे का दिल है तो ले लो फोटो। तो मैंने फोटो ले लिया। उस वक्त तो कैमरे भी बड़े और किस्म के होते थे, कोई ऐसे आजकल के मोबाइल तो थे नहीं, वो रखा ही नहीं हमने फोटो। तो बाबा ने उसमें महावाक्य उच्चारण किया। देखो क्या बाबा ने शिक्षा दी, बच्चे मेरा तो फोटो आएगा ही नहीं। देखो बाबा कह रहे हैं, कौन कह रहा है वो, मेरा तो फोटो आएगा ही नहीं, और ये शरीर जिससे मैं खेल रहा हूं ये तो छीछी है। यानी बाबा ने क्या किया, ये बुद्धि योग शरीर, बाबा कहता मेरे शरीर को मत देखो, शरीर में मेरे शरीर को याद मत करो, तो प्रैक्टिकल शिक्षा दी बच्चे ये शरीर तो छीछी है और मेरा फोटो, माने शिव बाबा का भी नहीं आएगा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा का भी नहीं आएगा, आत्मा का तो फोटो आता नहीं। अच्छा फिर भी बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी दिल है तो वो ले लो। हमने ले लिया फोटो। मतलब कहने का ये है, हमेशा बाबा क्या करते थे कि शरीरों को भूल करके आत्माभिमानी भाव, शिव बाबा को याद करो, मुझे देखते हुए भी किसको देखो, शिव बाबा को देखो। ये हमेशा बाबा की शिक्षा हुआ करती थी जब भी ऐसे मिलते थे। तो ये एक शिक्षा बाबा की हमने प्रैक्टिकल में वो देखी थी। और क्या सुना है, हाँ मम्मा की बात ये सुनाता हूं मैं आपको कि मम्मा जी में, मम्मा में हां जी का पार्ट पक्का था, हां जी का। हम जब इंजीनियरिंग पास कर लिया, 4-5 साल का कोर्स पूरा कर लिया, तो इसी बीच में हमारे लौकिक माता पिता भी ज्ञान में आ गए, तो हम अपने लौकिक पिताजी को लेकर के मधुबन में आए। और उस वक्त ये बन चुका था जो आगे है ना कमरे जहाँ पहले निर्वैर जी नीचे रहते थे वो बन चुका था, और वो हिस्ट्री हॉल भी बन चुका था। तो बाबा ने कहा कि जब हम वहां बैठे थे तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे तुम्हारी पढ़ाई वो सर्विस करने की कोई दरकार नहीं, तुम जाओ। जगदीश जी हमारे थे बड़े लेखक, जो आप जानते होंगे जगदीश भाई लेखक भी थे, एडिटर भी थे, चीफ स्पोक पर्सन भी थे जगदीश भाई, संजन को बाबा ने संजय का नाम दिया था, उनके पास जाकर उनकी मदद करो। तुम्हारे लोकित फादर मम्मा को कहने लगे, मम्मा अगर ये जाप भी करेगा तो हमें पैसे की दरकार नहीं, यज्ञ में मदद करेगा। कह लगे मम्मा ने कहा कि नहीं देखो भविष्य जानने वाला कौन है, किसी के बच्चे किस बच्चे का किसी आत्मा का भविष्य जानने वाला तो बाबा ही है, जो बाबा कहे उसको फॉलो ही करना है। तो मम्मा ये थी बाबा ने हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना, जो बाबा कहे मम्मा उनको फॉलो करती थी एकदम एक्यूरेट, कुछ भी अपनी बात को मिक्स नहीं करती थी, जो बाबा कहता था मम्मा उसको फॉलो, हाँ जी का पाठ मम्मा का बहुत पक्का था। तो ये मम्मा ने सिखाया है कि जो बाबा कहे उसको हाँ जी करते जाना है। यस
मोहन भाई, आपने ब्रह्मा बाबा से ऐसी कौन सी प्रेरणा ली जो आप बने अभी?
इस संदर्भ में मैं अंतिम दो दिन की बात बताना चाहूंगा। 17 और 18 जनवरी 1969 जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो पहले जब भी बाबा से मिलते थे हम लोग कुछ पूछते थे, बाबा कहते थे उसका उत्तर देते थे, लेकिन अंतिम दो दिन में हमने क्या देखा कि बाबा के सम्मुख जाते थे बस बाबा से दृष्टि दी बाबा ने, और बाबा कहते थे हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाबा ने कहा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए, यानी कि मन की बात बाबा तुरंत पढ़ के उसका समाधान कर देते थे। तो एक तो ये बात कर्मातीत अवस्था के आत्मा के निकट की है और मुरली में भी आया है, और ये बाबा ने कहा है कि किसी के भी मन की बात वो आत्मा पढ़ सकती है जो खुद मन जीते जगत जीत होगी। तो एक तो हमारा भी ये पुरुषार्थ चलता है कि जितना व्यर्थ की कम बात अगर होगी मन में व्यर्थ नहीं होगा तो हम उतना समर्थ दूसरी आत्मा के मन की बात को पढ़ सकेंगे और उसको समाधान कर सकेंगे। दूसरी बात उसका बाबा का हमने ये देखा कि बाबा ने कुछ समय पहले समेटना शुरू कर दिया था सब तरफ से, और कम से कम कोई भी बात पेंडिंग, क्योंकि भक्ति में भी कहते हैं कि अंत समय जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसको वो बात याद आती है जो कि कोई रही हुई बात होती है पेंडिंग बात होती है, या किसी के प्रति बहुत स्नेह हो या किसी के प्रति कोई दुश्मनी हो वो व्यक्ति याद आता है। तो इसीलिए कबीर के लिए भी कहना है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी भी आत्मा से हमारी न तो अति मित्रता हो, जो बाबा कहता है कि उसके बिना हम कोई भी बात अपने अंदर न रख सकें, न किसी से बैर हो, सबके प्रति एकदम समान भाव। तो एक ये लक्ष्य रहता है कि सबके प्रति समान भाव रहे, किसी के प्रति भी कोई स्नेह या ईर्ष्या घृणा का भाव न रहे। और जितना जितना ये स्थिति, क्योंकि अंतिम समय में ये देखा। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने देखी कि 18 जनवरी को बाबा ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि आज बाबा क्लास 7 बजे कराएगा। रोज क्लास 8:45-9 बजे होती थी और बाबा ने कहा कि अनाउंस कर दो आज 7 बजे क्लास होगी और सब भोजन करके आए, कोई भी बिना भोजन किए ना आए। तो देखो बाबा को जैसे पहले ही आभास हो गया था कि ये मेरा बच्चों से अंतिम मिलन है और बाबा ने इसीलिए क्लास भी प्रीपोन्ड कर दी। और उस दिन क्लास में ऐसे हम भी सामने ही बैठे हुए थे बाबा के और बाबा क्लास करा रहे थे, तो एकाएक ही हमारे मन में विचार आया, ये प्राइवेट बात है लेकिन सबके लिए है, ये मन में विचार आया कि बाबा कुछ मेरे लिए बोले। जैसे होता है ना साकार, जब अव्यक्त बाप दादा आता है तो दिल होती है बाबा के पास जाए, बाबा टोली दे दे या बाबा से दृष्टि मिल जाए, तो दिल होती है ऐसी। उस समय तो 15-20 लोग सिर्फ बैठे हुए थे और हमारे मन में आया बाबा कुछ बोले, तो बस मन में संकल्प आने की देर नहीं हुई और तुरंत ही बाबा तो कर्मातीत अवस्था को पहुंचे हुए थे, फरिश्ता स्वरूप को, तो बाबा ने उस बात को कैच किया होगा और तुरंत ही बाबा ने नाम लेकर के बोल दिया। बस कुछ बहुत अच्छे महावाक्य, देखो ये बच्चा मोहन है, ये कभी किसी की निंदा नहीं करेगा और बहुत मीठा बच्चा है और अंत तक संपूर्ण बन जाएंगे, ऐसा कह के बाबा ने ये बोल दिया। तो देखो मन में संकल्प आया और बाबा तक पहुंचा। हमारी भी सबकी अब मन की अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि मन जीते जगत जीते, अपना मन हमने जीता हुआ होगा, अगर व्यर्थ नहीं होगा तो हम किसी के भी मन के भावों को पढ़ सकेंगे और उनके मन के भावों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे और ये ही कर्मातीत और फरिश्ता स्वरूप की स्टेज।
बहुत बहुत अच्छा, आदरणीय मोहन भाई जी, मैं डॉक्टर प्रेम भाई से यही प्रश्न पूछेंगी कि एक डॉक्टर होने के नाते भी आपने ऐसा क्या मिला आपको जो आप आज इतने सारे ब्राह्मणों के लिए एक मार्गदर्शक का रोल प्ले कर रहे हैं।
शुरू में जब मिलन मनाने आए पांडव भवन, तो उस समय तो इतना कुछ क्लियर नहीं हुआ, फिर जैसे जैसे दादियों को देखते थे, दादियां कितना सहज होकर मिल रही हैं, बातें कर रही हैं और वो वाइब्रेशन दे रही हैं सभी दादियों, तो वो अंदर ही अंदर पेनिट्रेट करता था कि कुछ है और जो ये बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, ट्रांसपेरेंसी है। इसके पहले कई जगह गया था पर वो चीज फील नहीं होती थी, पर यहाँ जब वो पांडव भवन में दादियां मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है और कभी कभी कई मेलों में हेल्थ फेयर्स में दादियां उद्घाटन करने आती थी, तो एक पावर रहता था और वो जो पावर और वाइब्रेशन शांति के वो पेनिट्रेट करते थे कि कुछ है। और फिर जैसे ही दादी जी ने कहा, जब मैं एक जॉब कर रहा था, कि आ जाओ, तो एक सहज भाव से आ गया, यानी जैसा कुछ सोचा ही नहीं कि सेकंड थॉट क्या होगा अगर छोड़ रहा हूं, तो वो प्रोटेक्शन वो प्यार एक सहज डिटैच करता गया, जो दादियों में भी देखा कि उनका डिटैचमेंट विधेयी अवस्था एक नेचुरल थी और वो विधेयी अवस्था आती गई। एज ए डॉक्टर हम लोग केवल शरीर का ज्ञान जानते हैं, बॉडी का ज्ञान जानते हैं, पर यहाँ जब पता लगा कि शरीर से ऊपर भी कुछ है, क्योंकि जब एमडी कर रहा था कैंसर के पेशेंट देखते थे, सुबह देखते थे शाम को गया, तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है। इंटरेक्ट करते थे और वो चला गया। फिर धीरे धीरे जब ज्ञान से क्लियरिटी हो गई कि ये दोनों चीजें काम कर रही है, आत्मा भी है, तो वो आत्मा वाला लेसन मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और मैं कहूं अगर ह्यूमन साइकोलॉजी बिहेवियर आत्मा वाला लेसन में ही है, और अगर सोल वाले लेसन में आत्मा अभिमानी वाला लेसन क्लियर है तो सब क्लियर है। और उससे इंटरेक्शन, बिहेवियर, संपर्क, संबंध, ह्यूमन रिलेशनशिप सब आता गया, मैच्योरिटी आती गई। पहले हमें भी कुछ नहीं आता था, पर धीरे धीरे जब जो दादियों ने कनेक्टिविटी देती गई हर चीज, एज ए लीडर मेरे को लीडरशिप बड़ी अच्छी लगती थी। लीडरशिप के कैरेक्टर दादियों से सीखते गए। एक बार जब मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, मेरे साथ एक और डॉक्टर था, हम दोनों लेक्चर कर रहे थे, 3:30 का वक्त था। जैसे ही लेक्चर पूरा हुआ बड़ी दादी जी का फोन आ गया कि आप लोग इधर आओ, कॉटेज में आओ। हमें डर लगा कि क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं बोला। फिर जैसे ही वहां गए दादी जी ने कहा मैंने पूरा लेक्चर सुना, आओ चाय पियेंगे आज साथ में। तो वो जो ह्यूमन रिलेशनशिप एज ए लीडरशिप सीखा, वो सभी दादियों से सीखा कि जो शक्ति है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फियर नहीं लाना है। तो वो कैरेक्टर सीखते सीखते आगे बढ़ते गए 0 से, और जो मैच्योरिटी दादियों ने दी खुशी की, वो खुशी अंदर आती गई। और उसके कारण जो शरीर के कई नेगेटिव प्रोग्राम्स रहते हैं वो खत्म होते गए। दादी जानकी जी का मेरे को एक बहुत अच्छा याद आता है जो खुशी पर कनेक्ट किया, कि दादी जी ने कहा हॉस्पिटल में एक ऐसी ड्यूटी दो किसी को, जैसे ही कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर आए वहां कुर्सी पर एक व्यक्ति को बिठा दो, और उसका काम केवल ये होगा कि वो मुस्कुराकर उनका स्वागत करेगा, मुस्कराएगा। क्योंकि हॉस्पिटल में सब डरे हुए आते हैं, घबराए हुए आते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका काम होगा केवल मुस्कराना। इससे मेरे को काफी सीख मिली कि हम अगर मुस्कराते हैं, सबसे बड़ा सहयोग अगर हम देख सकते हैं यज्ञ को, हमारे चेहरे से, चलन से मुस्कुराता हुआ चेहरा भी दें, एक दूसरे को दें, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है।
बहुत बहुत
हाथ उठाएं फिर से और कहें मैं खुश हूँ। एक दूसरे का चेहरा देखो, हाँ, एक दूसरे को देखो, मुस्कुराता हुआ देखो और खुशी के वाइब्रेशन दो। गुड,
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम भाई जी। आप तीनों पैनलिस्ट का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, जोरदार करतल ध्वनि से धन्यवाद करें। भले इन आंखों ने बाबा को नहीं देखा साकार में, मम्मा को नहीं देखा, लेकिन आपके अनुभव ने हमें वो आंख दी जो हम साकार को भी समझ पाए और मम्मा को भी समझ पाए और दादियों को भी समझ पाए। तो चलो 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।
जाएगा कर तपस्या करो याद
अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो। के संकल्प लाओ, दर सुखों का वो खुल जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। अपने चिंतन की धारा बदल दो।